सर, सबसे पहले तो अपनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड यहाँ क्या पोजीशन है वो बता दीजिए।
मैं मनोज कुमार आर्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान नवामा में उप प्राचार्य के पद पर कार्यरत हूँ। लगभग 4 महीने से यहाँ पर हूँ। बेसिकली उप प्राचार्य के जो दायित्व हैं वो प्राचार्य के साथ सामंजस्य बैठाकर इस संस्थान में जो भी क्रियाकलाप हैं, जो भी एक्टिविटीज़ हैं, उसको हम लोगों को रन करना होता है। बेसिकली प्राचार्य के द्वारा जो भी दायित्व हमें सौंपे जाते हैं वो एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव दो तरीके के हो सकते हैं। एकेडमिक इन द साइंस कि जो इस संस्थान में कक्षाएं चल रही हैं, BTC या जिसे हम DL-ED कह सकते हैं, उनका मॉनिटरिंग करना, उनके मॉनिटरिंग के बाद उसमें जो भी बेस्ट ऑफ द बेस्ट हो सकता है बच्चों के हित में, उसके लिए हमें प्लानिंग करना, उसके लिए स्ट्रेटेजी तैयार करना और बच्चों को आगे के फ्यूचर के लिए तैयार करना, ये हम लोगों का एकेडमिक रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है बेसिकली। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव में जो यहाँ पर इस संस्थान में अलग अलग समय पर ट्रेनिंग्स चलती हैं इन सर्विस और प्री सर्विस, उसकी भी मॉनिटरिंग और उसकी गुणवत्ता का ख्याल रखना हम लोगों की जिम्मेदारी है और वो हम प्राचार्य के साथ और बाकी स्टाफ के साथ मिलकर उसको पूरा करते रहते हैं।
तो सर, हमने सुना कि डाइट के अंदर 7 यूनिट्स होती हैं पूरी, उसमें से 2 आई थिंक प्री सर्विस और इन सर्विस की हैं, और क्या क्या यूनिट्स हैं आप बता सकते हैं, वह कैसे तरीके से फंक्शनिंग है उनकी इस डाइट में?
इन सर्विस एंड प्री सर्विस ट्रेनिंग की
और सर बाकी डिपार्टमेंट
बाकी बची है
डाइट जो देखती है
डाइट में, क्योंकि अभी अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा मुझे डाइट के बारे में इस संबंध में जो ब्रांचेज हैं वो जानकारी नहीं है, क्योंकि मेरा जो मेजर वर्क रहा है वो सेकेंडरी एजुकेशन में रहा है।
अच्छा,
आई एम फॉर द फर्स्ट टाइम इन द बेसिक एजुकेशन, तो बहुत ज़्यादा अभी इस चीज़ के बारे में आई एम अनेबल टू एक्सप्रेस एनी व्यूज, बट एज फार एज द ब्रांचेज आर कंसर्न्ड, बेसिकली यहाँ पर जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी है वो एग्ज़ाम सेक्शन है, वो हम लोग कराते हैं। रिसर्च वर्क है, रिसर्च वर्क जो समय समय पर होते रहते हैं उसको हम लोग रिपोर्टिंग करते हैं और उसके आधार पर जो भी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए हम लोग काम कर सकते हैं SCERT के कोऑपरेशन में, SCERT के डायरेक्शन में, वो हम लोग करते हैं।
SCERT से फिर आपका कैसा सब इंटरेक्शन रहता है और आपको क्या क्या अगर लगता है सपोर्ट चाहिए SCERT से तो वो कैसे फुलफिल होता है?
SCERT समय समय पर जो भी डायरेक्शंस जारी करती हैं वी हैव टू एग्जीक्यूट ऑल दोज डायरेक्शंस। इसके अलावा जो भी हम लोगों को जिम्मेदारी SCERT से मिलती है वो हम लोग यहाँ पर एग्जीक्यूट करते ही हैं। एज फार एज सपोर्ट इज़ द कंसर्न, वेन एवर इट इज़ रिक्वायर्ड और जिस लेवल से भी वो रिक्वायर्ड होती है वो हमें समय समय पर SCERT से मिलती है। जहाँ तक SCERT की बात है, SCERT में जो भी एक्टिविटीज़ हैं, जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर टीचर्स के, उन टीचर्स के कॉम्पिटिशन्स को कराने के बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या वो मंडल लेवल पर जैसा भी डायरेक्शंस होता है उन कॉम्पिटिशन्स को हम लोग कराते हैं और उन कॉम्पिटिशन्स के बाद जो भी प्रतिभागी हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं, उसको हम स्टेट लेवल पर भेजते हैं। एक तो इस तरह का कार्य हो गया। इसके अलावा एकेडेमिक में जो रिसर्च वर्क है, जैसा मैं पहले बता चुका हूँ, रिसर्च वर्क से रिलेटेड जो भी समय समय पर टास्क SCERT हम लोगों को देता है वो पार्टिसिपेंट्स के माध्यम से, टीचर्स के माध्यम से और जहाँ ज़रूरत होती है बच्चों के माध्यम से उसको हम पूरा करते हैं। जैसे अभी पिछले दिनों आई थिंक 8 या 9 तारीख को एक टेस्ट हुआ था निपुण भारत सर्वे का, निपुण भारत टेस्ट का, उसको हम लोगों ने यहाँ पर कंडक्ट कराया। ये सब SCERT के डायरेक्शंस में ही हुआ था और उसके पीछे जो मेन मकसद था, मुख्य उद्देश्य था, वो केवल ये था कि निपुण भारत के जो लक्ष्य हैं उन लक्ष्यों को प्राइमरी और सेकेंडरी जूनियर हाई स्कूल्स के बच्चे कितना अचीव करने की पोजीशन में हैं। जब उसकी रिपोर्ट्स वहाँ पर पहुँचेंगी या उसकी जो भी परफॉर्मेंस है वहाँ पहुँचेगी SCERT में, उसके बाद उस परफॉर्मेंस का एनालिसिस करने के बाद जो भी स्ट्रेटेजी SCERT तैयार करेगा वो हम लोगों को डायरेक्शन देगा और उसके बाद हम लोग आगे उस पर कार्य करेंगे।
सर डायरेक्शंस के अलावा एस सी आर डी आपको लेटर्स और इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड होते हैं थ्रू एस सी आर डी, क्या वो मॉनिटरिंग में भी साथ देता है कि इन चीज़ों को मॉनिटर कैसे किया जाए?
दैट डिपेंड्स, दैट डिपेंड्स कि वो डायरेक्शंस किस तरीके के हैं। एक तो पॉलिसी मैटर से रिलेटेड है, वो पॉलिसी मैटर से रिलेटेड अगर डायरेक्शंस हैं वो बिल्कुल अलग चीज़ है। लेकिन अगर वो क्वालिटी एजुकेशन से रिलेटेड है या एजुकेशन की क्वालिटी को बेटर करने के रिलेटेड है तो हम लोग उसमें काम करते हैं, पूरी टीम हम लोगों की काम करती है, जिसका भी जो रोल होता है उसके माध्यम से उस काम को हम लोग पूरा कराते हैं।
तो उनकी मॉनिटरिंग कैसे होती है सर, आपके थ्रू ही, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के थ्रू ही?
यस एग्जैक्टली, हम लोगों के यहाँ पर जैसे प्रिंसिपल है, मैं वाइस प्रिंसिपल हूँ, उसके अलावा चार हमारे यहाँ सीनियर लेक्चरर्स हैं, हालांकि छः पद हैं सीनियर लेक्चरर के, उसमें से चार हमारे यहाँ इसमें कार्य कर रहे हैं। और इसके अलावा जो एकेडमिक स्टाफ है लगभग 16 लोगों का, 16 प्रवक्ताओं का, उन लोगों के सहयोग से ही पूरा मॉनिटरिंग का वर्क समय समय पर चलता है। इस यहाँ पर एस सी आर टी के डायरेक्शंस में एक चीज़ और है, सपोर्टिव सुपरविजन, जो हमारे सभी 16 प्रवक्ता, मैं खुद, हमारे प्रिंसिपल सर और वरिष्ठ प्रवक्ता, सभी लोग समय समय पर सपोर्टिव सुपरविजन और इंस्पेक्शन, दो अलग अलग चीज़ें हैं। सपोर्टिव सुपरविजन में जो हमारे यहाँ के 16 प्रवक्ता हैं उन लोगों को अलग अलग विकास खंड बटे हुए हैं, वो समय समय पर जो भी उनको टारगेट्स हैं, एक मंथ में 10 विद्यालयों का सपोर्टिव सुपरविजन उन्हें करना होता है, वो वहाँ पर जाते हैं, सुपरविजन करते हैं, समय समय पर जो उन्हें लगता है उसके बारे में उसको सपोर्ट भी करते हैं, जहाँ पर कमी नज़र आती है उसके बारे में सपोर्ट भी वो वहाँ पर करते हैं। इसके अलावा हम लोग और वरिष्ठ प्रवक्ता और प्रिंसिपल सर, ये सभी लोग इंस्पेक्शंस पर समय समय पर जाते हैं और उसकी रिपोर्टिंग बीएसए को, जहाँ पर कोई कमी नज़र आती है बीएसए को, या अगर कोई और इस तरह की कमी है तो एससीईआरटी के लेवल पर भी उसकी रिपोर्टिंग की जाती है। सामान्यतः एससीईआरटी को रिपोर्टिंग करने की स्थिति इसमें ऑफलाइन नहीं है, ये सब चीज़ ऑनलाइन है, ऐप के माध्यम से इसके निरीक्षण रखा समय समय पर, जैसे ही निरीक्षण होता है उसको भेजी जाती है।
तो सर आपको पता चलता है कि जैसे आप कुछ ऐप में डाल रहे हैं कि इसकी ज़रूरत है, आपने इंस्पेक्शन किया है, तो वो काम हुआ है कि नहीं, वो आपको कैसे पता चलता है?
नहीं, मुझे लगता है कि इसके बारे में हम लोगों को कोई जानकारी नहीं मिल पाती है। जो लोग हम लोग रिपोर्टिंग करते हैं उसका क्या बाद में फीडबैक है, क्या उस पर एक्शंस लिए गए हैं, नॉर्मल केसेस में इसकी जानकारी यहाँ तक नहीं मिल पाती है।
क्या आपको लगता है वो जानकारी अगर आपको मिल पाई है तो?
होनी चाहिए, आई एग्री विद यू, ये होनी चाहिए कि जो हम लोगों ने कमियां देखी हैं, मैंने या हमारे किसी बाकी किसी साथी ने देखी है, तो दैट वी शुड नो कि उसके बाद में उस पर क्या एक्शंस लिए गए अगर कोई कमी नज़र आई है। अगर कमी भी नज़र आई है या कोई अच्छाई भी नज़र आई है, तो अच्छाई के बाद भी एटलीस्ट ये हमें पता रहना चाहिए कि जो हम लोगों के अच्छाई है कहीं दूसरी जगहों पर उसको फॉलो किया जा रहा है, दूसरी जगह पर भी इम्प्लीमेंट कराने की कोई कोशिश की जा रही है या नहीं की जा रही है।
बिल्कुल
सर, वो किसी भी तरीके से यहाँ पर एक चाहे न्यूज़लेटर के माध्यम से, मैगजीन के माध्यम से, किसी भी माध्यम से या इंडिविजुअल राइट्स के माध्यम से इस तरह की जानकारी आई हो होनी चाहिए।
जी सर, सो आपको लगता है कि ये बेटर हो सकता है अगर डाइट इंडिपेंडेंटली फंक्शन करे रादर देन एक हायरार्की एससीईआरटी के साथ फॉलो करते हुए?
हायरार्की मस्ट बी देयर, विदाउट हायरार्की आई डोंट थिंक हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को रन कर पाएंगे। Within the institution and outside the institution, in both the cases, hierarchy must be there.
Sir, जो अभी support मिल रहा है SCERT से, उसके अलावा और किस किस field में या किस किस aspect में और support मिल सकता है SCERT से, मतलब आपको लगता है कि मिलना चाहिए ताकि diet और better function कर सकें?
देखिए, as far as Meerut diet is concerned, इसके लिए Meerut को model diet के रूप में select किया है, तो मैं समझता हूँ Meerut diet में तो इस तरह की सपोर्ट की संभावना बहुत ज़्यादा है।
अच्छा।
क्योंकि मॉडल डाइट के रूप में इसको सिलेक्शन किया गया है, लेकिन फिर भी इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट के अलावा बहुत सी ऐसी सपोर्ट्स हैं जिसमें हम लोगों को एससीईआरटी की मदद की ज़रूरत पड़ती है और पड़ेगी भी। जैसे एक चीज़ तो अभी सॉल्व हुई है और मैं समझता हूँ वो सबसे बड़ी एक समस्या थी जो हम लोगों के डाइट में, वेतन की समस्या थी।
अच्छा।
हाँ, वेतन जो हम लोगों का सभी का तीन तीन चार चार महीने के बाद मिला करता था, बट नाउ इट हैज़ बीन रिजॉल्व्ड, रिसेंटली इट हैज़ बीन रिजॉल्व्ड। तो एक बहुत बड़ी समस्या थी जिसमें SCERT का सपोर्ट और हमारे जो ऊपर के अधिकारी हैं उनका सपोर्ट हमें मिला है, तो ये तो एक समस्या थी ही। लेकिन अदर देन द सैलरी इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं जहाँ पर हमें सपोर्ट मिलती रही है और मिलनी भी चाहिए।
सर, अगर मैं उस समस्या के बारे में थोड़ा और पूछ सकती हूँ, तो आपने बोला कि 3-4 महीने के बाद मिलती थी सैलरी, तो ये आपने SCERT को डायरेक्टली अप्रोच किया है, प्रिंसिपल सर ने किया है, आपने किया है?
नॉट इंडिविजुअल, मेरा टाइट इज नॉट कंसर्न, ये तो सभी लोगों की कॉमन समस्या थी फॉर ऑल द टाइट्स। ऐसा नहीं है कि मेरा टाइट की समस्या थी, और इस समस्या को समय समय पर लोगों ने उठाया होगा, देन इट हैज बीन रिजॉल्वड।
अच्छा,
अभी रिसेंटली आई थिंक लास्ट वीक ओनली, लास्ट वीक प्रोसेस वॉज कंटिन्यूइंग सिंस द लास्ट 1 ईयर ऐसा मुझे जानकारी है, लेकिन नाउ इट हैज बीन रिजॉल्वड।
अगर आपको सर कुछ भी बात करनी होती है SCERT से की किसी भी बारे में, कि ट्रेनिंग कैसे करवानी है, या मतलब तो सर वो स्ट्रक्चर क्या रहता है, मतलब आप अपने जो नीड्स होती हैं या वो किसके थ्रू कम्युनिकेट करते हैं SCERT को, मतलब मीटिंग्स होती हैं या कैसे, मतलब मैसेज कैसे जाता है वहाँ तक, या वहाँ से कैसे आता है यहाँ तक?
देखिए, मीटिंग की जहाँ तक बात है, एक मंथली मीटिंग प्रिंसिपल सर की और स्टेट लेवल पर हुआ करती है।
अच्छा,
मैंने तो कभी इस तरह की मीटिंग में प्रतिभाग नहीं किया है, क्योंकि अच्छा, मैं पहले ही बता चुका हूँ मुझे सिंस द लास्ट 4 मंथ आई एम हियर।
जी जी,
इससे पहले मैं कभी भी बेसिक एजुकेशन में नहीं था, सेकेंडरी एजुकेशन में रहा, तो मीटिंग में तो कभी पार्टिसिपेट करने का मुझे मौका नहीं मिला।
अच्छा,
लेकिन मंथली एक मीटिंग हुआ करती है।
अच्छा,
सभी प्रिंसिपल्स की SCERT लेवल पर वहाँ जाते हैं, वहाँ जाने के बाद जो भी अलग अलग समस्या अलग अलग प्रिंसिपल्स लोग वहाँ बताते हैं, उसको फीडबैक वहाँ पर लिया जाता है, और फीडबैक के बाद उसका रिजोल्यूशन रिजॉल्व करने का एफर्ट्स किए जाते हैं। ठीक, और जहाँ तक ट्रेनिंग्स की बात है, ट्रेनिंग के बारे में जो भी मॉड्यूल और जो भी शेड्यूल्स SCERT तय करता है, उसके अकॉर्डिंगली हमें उसको फॉलो करना है, उसके लिए बजट, उसके लिए मॉड्यूल्स, उसके लिए सभी चीज़ें वहाँ से इशू की जाती हैं, और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। हाँ, इतना ज़रूर है कि लोकल लेवल्स पर जो लोकल सर्कमस्टेंसेज हैं, लोकल नीड्स हैं, उसमें थोड़ा सा उसमें चेंजेस उस मॉड्यूल में करने की कोशिश की जाती है, और अकॉर्डिंगली यहाँ पर ट्रेनिंग को कंडक्ट कराया जाता है। मेरे सर,
सर ऐसा कोई माध्यम है जैसे जहाँ कि आप SCERT को फीडबैक दे पाए कि ये अच्छे से चल रहा है, ये नहीं चल रहा है, मतलब कोई ऑफिशियल वे में आप वो फीडबैक प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर SCERT कभी आपसे फीडबैक मांगती है किसी भी तरीके की?
जस्ट आफ्टर द ट्रेनिंग इस तरह की एक रिपोर्ट यहाँ से सबमिट की जाती है, लेकिन आई डोंट थिंक वो फीडबैक है, वो केवल एक रिपोर्टिंग है, इट्स अ काइंड ऑफ रिपोर्ट ओनली। और
कि ट्रेनिंग किस तरीके से हुई
है?
हाँ, बस उसकी 3 दिन की है या 5 दिन की, उसकी पूरी एक रिपोर्ट सबमिट की जाती है थ्रू ईमेल और जो भी उसका सिस्टम है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो फीडबैक का माध्यम है, वो सिंपली एक रिपोर्टिंग है, रिपोर्टिंग मेथड है बस।
सर, क्या आपको लगता है ये ज़रूरी है?
ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है, एक इस तरह का कोई चैनल होना चाहिए जहाँ पर फीडबैक ट्रेनिंग्स के बारे में होना चाहिए।
इसमें सर ये जो मैं जोड़ना चाह रहा था, इसमें पिछले जो अभी हमने कुछ प्रोग्राम कंडक्ट कराए थे, तो अभी ऑफिशियली SCERT से भी डायरेक्ट है वो मिलते हैं ऑनलाइन माध्यम से, कुछ भी हम प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे हैं तो गूगल मीट के माध्यम से वो डायरेक्ट इन्वॉल्व होते हैं, कुछ क्वेरी है या कुछ उनको सजेशन देना है तो वो सजेशन देते हैं और इनपुट आउटपुट लेते हैं।
अच्छा,
और जो मंथली मीटिंग्स होती है सर प्रिंसिपल सर की, उसका एक एजेंडा रहता है?
एजेंडा है वो, तो
एजेंडा के तहत जो
50 पॉइंट्स का एजेंडा है, उन पॉइंट्स पर
प्रेजेंट करके सर ले,
लेकिन आई थिंक वो रिपोर्टिंग मेथड ज़्यादा है, फीडबैक उसमें कम है। हालांकि उस रिपोर्टिंग से या जो भी उनका इंफॉर्मेशंस है उससे वो क्या उसको इन्फ्लुएंस निकालना चाह रहे हैं वो एक अलग चीज़ है, लेकिन वो मेरे विचार से रिपोर्टिंग ज़्यादा है, फीडबैक उसमें कम है, जस्ट कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन व्हाट आई फील।
अच्छा,
what I feel.
So collection of information से ये भी question भी पता चला है कि आप field visits पे आपको जाने का भी मौका मिला है, आपको field visit या schools पे जाने का मौका मिला है अभी?
हाँ.
तो sir आपके app में कौन से parameters given होते हैं? Because मेरे को पता चला है कि हर designation level पे अलग-अलग parameters होते हैं.
देखिए जहाँ तक vice principal की बात है, vice principal का कोई अलग से उस app में parameter नहीं है. और जब पैरामीटर नहीं है तो हम बल्कि वाइस प्रिंसिपल का उसमें ऑप्शन भी नहीं है.
अच्छा.
तो जो भी रिपोर्टिंग है वो हम पर्टिकुलरली मैं अपनी बता रहा हूँ कि उसमें ऐप पर सेंड करने का कोई मेरे लिए प्रोविज़न ना होने की वजह से हम लोग ऐप पर उसको नहीं डाल पाते हैं. लेकिन प्रिंसिपल्स एंड वरिष्ठ प्रवक्ता एंड सपोर्टिव सुपरविजन फॉर द लेक्चरर्स, उन लोगों के लिए उसमें प्रोविजन्स हैं, तो वो लोग अपनी रिपोर्टिंग थ्रू ऐप करते हैं.
सर, बीआरसी के साथ कैसा इंटरेक्शन है
डाइट
का?
बीआरसी के साथ जहाँ तक मेरा डाइट की बात है, मैं नहीं कह सकता. यहाँ पर प्रिंसिपल सर ने कोशिश की है कि हर मंथ एक इस तरह की मीटिंग यहाँ पर कंडक्ट होती है और उसके माध्यम से इंटरेक्शन किया जाता है. और उसमें भी जैसे स्टेट लेवल पर एजेंडा भेजा जाता है, ऐसे ही हम लोग यहाँ से एजेंडा भेजते हैं, कभी गूगल मीट के माध्यम से और कभी ऑफलाइन मीटिंग भी हम लोग यहाँ पर बीआरसीज के साथ, एवीएसएस के साथ उसको कंडक्ट करते हैं. हर मंथ उसकी मीटिंग यहाँ पर होती है. इसके अलावा जब जब भी ज़रूरत होती है तो हम लोग टेलीफोनिकली उसको कन्वर्सेशन करके उन चीज़ों को उन इश्यूज पर बात करते हैं.
सर, मीटिंग्स की एजेंडा क्या होती है यूजुअली? मतलब हर मंथ आप मिल के क्या कौन से पॉइंट्स पर डिस्कस करते?
मेनली तो उसमें देखिए, क्योंकि बच्चों के बारे में हम बात कर रहे हैं, बच्चों के एजुकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो मेनली दो एजेंडा हैं. इसके अलावा तो बाकी चीज़ें हैं ही. दो एजेंडा हैं, एक तो निपुण भारत का जो लक्ष्य है उसको सभी स्कूल्स कहाँ तक अचीव करने की पोजीशन में है, ठीक. इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चरल जो भी स्कूलों में कहीं कमियाँ हैं उसके बारे में भी हम लोग बात करते हैं. स्कॉलर इंस्पायर अवार्ड और इस तरह की जो चीज़ें हैं, इंस्पायर तो नहीं है शायद प्राइमरी में, कोई दूसरा नाम है, उस अवार्ड के बारे में हम लोगों ने पिछली मीटिंग में चर्चा की थी, कितने बच्चों ने उसमें रजिस्ट्रेशन कराया है नहीं कराया है इसके बारे में चर्चा. तो मेनली क्वालिटी एजुकेशन के बारे में हम लोग बात करते हैं एजेंडा में.
सर, आपको क्या लगता है ये मंथली मीटिंग्स यूजफुल होती है बीआरसी के साथ?
हाँ, डेफिनेटली. कितना यूज़फुल है ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल यूज़फुल नहीं. जो भी स्टेट लेवल से जो भी डायरेक्शंस स्कूल्स के लिए, बीआरसीज के लिए, एवीएसएस के लिए जारी होते हैं, दिस इज़ द ओनली वे टू कम्युनिकेट. जब हम बीआरसीज के साथ, एवीएसएस के साथ मीटिंग्स करते हैं तो जो भी ऊपर से आई हुई इंफॉर्मेशन हैं या डायरेक्शंस हैं वो हम पास ऑन करते हैं. और फिर जैसा मैंने बताया, मॉनिटरिंग का जो सिस्टम है, चाहे वो सपोर्टिव सुपरविजन से हो, चाहे वो इंस्पेक्शंस के थ्रू हो, हम उसको मॉनिटरिंग करने की कोशिश करते हैं कितना वहाँ पर वो इम्प्लीमेंटेशन लेवल पर पहुँचा है.
सर, हम डाइट बरेली में इससे पहले गए थे तो हमें यहाँ पे एक नई चीज़ देखने को मिली, हुमाना पीपल टू पीपल जो एन जी ओ आपके साथ जुड़ा हुआ है. तो आपको लगता है कि जो डाइट की फंक्शनिंग अभी इंटरनल फंक्शनिंग है वो बेटर हुई है एक एक्सटर्नल सपोर्ट की वजह से?
जैसा मैंने अभी बताया कि अभी बहुत ज़्यादा डाइट से मैं जुड़ नहीं पाया क्योंकि चार महीने का ही समय हुआ है, लेकिन इतना ज़रूर है कि एक्सटर्नल सपोर्ट से, मैं डाइट की ही बात नहीं कर रहा, कहीं भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इफ वी हैव एक्सटर्नल सपोर्ट तो वो डेफिनेटली बेनिफिशियल ही होती है. उसमें कहीं कोई नुकसान, कोई भी डिसएडवांटेज इन माई ओपिनियन नहीं. हीरा लाल जी बैठे हैं, उसी एनजीओ से जुड़े हुए हैं, तो 10 विद्यालय उन्होंने सुपरविजन या मॉनिटरिंग के लिए अडॉप्ट कर रखे हैं. और मुझे अभी इनकी भी टीम वहाँ से आई थी दिल्ली से, उन लोगों ने भी सर्वे किया था. तो मैं समझता हूँ कि जहाँ पर इस संस्था ने 10 विद्यालयों को चयन किया है वहाँ पर निश्चित रूप से अन्य विद्यालयों की अपेक्षा बेहतर फंक्शनिंग हो रही होगी, बेहतर काम हो रहे होंगे. हालांकि उन 10 में से मुझे किसी भी विद्यालय को अभी तक देखने का मौका नहीं मिला, लेकिन मुझे उम्मीद है जैसा ये लोग काम कर रहे हैं इस तरह के निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एडवांटेजेस बच्चों को मिल रहे होंगे.
सर, आपको क्या लगता है कि
सर आपके पीरियड में जैसे आप कुछ 4 महीने हुए हैं अभी यहाँ आए, तो आपको कोई अगर चैलेंजेस फेस किए आपने इन 4 महीनों में एज अ वाइस प्रिंसिपल?
चैलेंजेस एक तो ये है कि बच्चों की जो रुचि है क्लासेस अटेंड करने में वो मुझे लगता है कि अभी कम है ड्यू टू मैनी रीजन्स, रीजन्स उसके बहुत से हो सकते हैं। तो एक तो चैलेंज ये है कि हम लोग क्लासेस को प्रॉपरली रन करें, बच्चे आए और हम लोग जब बच्चे आए तो उसमें उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए प्रोवाइड कर पाएँ, एक चैलेंज है। उसके लिए प्रिंसिपल सर और हम लोग सभी मिलकर काम भी कर रहे हैं एंड आई होप कि जल्दी ही इसके रिजल्ट्स मिलेंगे।
जी सर, एक प्रोफेशनल ग्रोथ के ऊपर एक क्वेश्चन था कि इस डाइट फंक्शनिंग में एडमिनिस्ट्रेटिव और एकेडमिक का प्रोफेशनल ग्रोथ कैसे रहता है, किस किस स्टेज पे वो जाते हैं यहाँ से?
एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव,
एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रोथ।
एडमिनिस्ट्रेटिव की जहाँ तक बात है, सबसे पहले प्रिंसिपल सर की बात करें या मैं अपनी बात करूँ, हम दो लोग प्रिंसिपल सर डिप्टी डायरेक्टर की रैंक के हैं एंड ही हैज़ द स्कोप, ही हैज़ द अपॉर्चुनिटी टू बी प्रमोटेड फॉर द नेक्स्ट पोस्ट मी जॉइंट डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन। जॉइंट डिपेंड करता है कि रिटायरमेंट कितना है और प्रमोशन की अपॉर्चुनिटीज आगे कितनी है, तो ये उनका हो गया। सिमिलरली मैं वाइस प्रिंसिपल इक्वलेंट टू डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स, मैं था भी डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स सेकेंडरी एजुकेशन में। तो जैसे प्रिंसिपल सर का अपॉर्चुनिटी है प्रमोशन की, वैसे ही मेरे लिए भी अपॉर्चुनिटी है DDR रैंक पर जाने की एंड नेक्स्ट जॉइंट डायरेक्टर रैंक पर जाने की। बट अल्टीमेटली इट डिपेंड्स ऑन द अपॉर्चुनिटीज फॉर द प्रमोशन, कितनी अवेलेबिलिटी है प्रमोशन में, लेकिन हम लोगों के चांसेस हैं। सिमिलरली जो वरिष्ठ प्रवक्ता हैं वो क्लास 2 रैंक में है यहाँ पर, दे आर इक्वलेंट टू बेसिक शिक्षा अधिकारी, ठीक है, इनके भी चांसेस प्रमोशन के हैं, नेक्स्ट प्रमोशन DIS और इक्वल एंड पोस्ट, राइट। एज फार एज द लेक्चरर्स आर कंसर्न, आई डोंट थिंक कि उनके लिए अभी कोई इस तरह का शेड्यूल या इस तरह का कोई प्रमोशन की अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इनका ग्रेड, उनका जो कैडर है वो अभी प्रमोशन के लिए अभी नहीं है लेक्चरर्स का। और बाकी जो हमारा ऑफिशियल स्टाफ है, क्लरिकल स्टाफ है, उनके लिए वही प्रमोशंस की अपॉर्चुनिटीज जो जनरली होती हैं वो है।
तो सर क्लरिकल एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ में ये प्रमोशंस कितने फ्रीक्वेंट होते हैं?
कितने फ्रीक्वेंट होते हैं
जी?
और
कितने टाइम पीरियड पर भी होते हैं?
इसका कोई, देखिए आई डोंट थिंक कोई फिक्स है पीरियड, डिपेंड करता है कि आगे की पोस्ट के लिए हमारे पास वैकेंट पोस्ट कितनी है, नंबर वन। अब उस वैकेंट पोस्ट के अगेंस्ट हमारे पास नीचे कितनी अवेलेबिलिटी है, दैट इज नंबर टू। अब अवेलेबिलिटी में भी कितने लोग क्वालिफाइड कर रहे हैं, दिस इज नंबर थ्री। फ्रीक्वेंसी की बात इसमें कोई फिक्स नहीं है, कभी कभी मैं समझता हूँ पिछले 4-5 साल से कोई प्रमोशन नहीं हुआ है। और जहाँ तक मैं और क्लियर करूँ, मेरा 99 का बैच है, आई गॉट द फर्स्ट प्रमोशन इन 2016, दैट मीन्स आफ्टर 17 ईयर्स, राइट। जो 95 का बैच है दे गॉट द प्रमोशन जस्ट आफ्टर 3 ईयर्स ऑफ देयर सर्विस, ठीक है ना। सो व्हाई आई एम टेलिंग यू दीज टू फैक्ट्स, दीज टू फैक्ट्स आई एम एक्सप्लेनिंग यू जस्ट बिकॉज कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ फ्रीक्वेंसी इज नॉट फिक्स्ड, फ्रीक्वेंसी फिक्स नहीं, बहुत सी चीज़ें हैं, कभी कोर्ट केस है, कभी कुछ है, कभी अवेलेबिलिटी है, कभी क्वालिफाइड स्टाफ नहीं है, बहुत सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से प्रमोशन की अपॉर्चुनिटीज फिक्स टेन्योर कोई नहीं है।
सर ये तो थोड़ा वैसे अनफेयर है, बिकॉज अगर 16-17 ईयर्स तक आप 90 उससे बैच से वेट कर रहे हैं, 3 ईयर्स में ही उनको आपको लग रहा है, तो कोई बॉडी है जिसको आप बता सकते हैं ये चीज़? कम्युनिकेशन
हायरार्की इज देयर, हायरार्की इज देयर, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ अवेलेबिलिटी ऑफ द वैकेंट पोस्ट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द स्टाफ एंड सरकमस्टेंसेस, ये एक और फैक्टर है जिसकी वजह से हम लोगों के प्रमोशन कहीं ना कहीं इंटरप्ट होते हैं, तीनों चीज़ें। लेकिन ये जहाँ तक बताने की बात है, कहने की बात है, हम लोग समय समय पर अपनी बातें रखते हैं अपनी एसोसिएशन के माध्यम से, सुनी जाती है नहीं सुनी जाती है एक अलग चीज़ है, दैट इज़ डिफरेंट थिंग।
सर फैकल्टी के लिए मतलब यहाँ जो लेक्चरर्स हैं उनके लिए किसी तरह के प्रोग्राम्स या ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज किए जाती हैं ताकि उनका और समझ बने, उनको काम करने में मदद मिले?
बिल्कुल, अभी देखिए 19th से एक ट्रेनिंग शेड्यूल इलाहाबाद में हो रहा है और उसमें हमारे यहाँ के 10 या 11 लोग लेक्चरर्स लोग दे विल अटेंड दैट ट्रेनिंग। और इसी तरह की ट्रेनिंग समय समय पर होती रहती है। वो अलग बात है कि सब्जेक्ट वाइज ट्रेनिंग है या एज अ होल ट्रेनिंग है या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ट्रेनिंग है या स्टेट लेवल पर है, दैट इज अनदर थिंग, बट ट्रेनिंग शेड्यूल्स आर ऑलवेज देयर।
सो ये ट्रेनिंग सिर्फ लेक्चरर्स की होती है, सीनियर लेक्चरर्स भी इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर?
सीनियर लेक्चरर्स की ट्रेनिंग एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग और बिफोर द ज्वाइनिंग दे गॉट सब्सक्राइब ऑफ ट्रेनिंग, क्योंकि जो सीनियर लेक्चरर हैं बेसिकली यहाँ पर वो एकेडमिक हैं लेकिन जब वो फील्ड में जाएंगे तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क हो जाएगा उनका।
अच्छा।
यहाँ पर उनका वर्क जो है वो एकेडमिक है, ठीक है, तो बीच में मतलब आफ्टर जॉइनिंग द सर्विस बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग्स की अपॉर्चुनिटीज सीनियर लेक्चरर्स की नहीं है, और अगर होती है तो बहुत ज़्यादा कोई मास लेवल पर नहीं है।
अच्छा।
बहुत छोटे छोटे बंच में उनकी ट्रेनिंग्स होती है लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा नहीं है। लेक्चरर्स की ट्रेनिंग जैसा मैं बता रहा हूँ अभी 19 से शेड्यूल है और इस तरह की ट्रेनिंग्स होती रहती है।
इसमें सब्जेक्टिव वाइज ट्रेनिंग्स है
ना, सब्जेक्ट मैंने कहा ना दोनों तरह से है, सब्जेक्ट वाइज भी हो सकती है एंड एज अ होल भी हो सकती है, दोनों ही, वो डिपेंड करता है कि ट्रेनिंग का मॉड्यूल क्या है। जैसे अभी 10-11 लोग जाएंगे तो आई डोंट थिंक वो सब्जेक्ट वाइज ट्रेनिंग होगी, वो कहीं ना कहीं इस तरह का मॉड्यूल होगा जिसमें वो कॉमन ट्रेनिंग कुछ ना कुछ देना चाह रहे हो। आई डोंट नो कि वो क्या है इस मॉड्यूल या क्या है उसका, लेकिन जब 10-11 लोग एक साथ जा रहे हैं सभी सब्जेक्ट्स के लोग उसमें हैं तो मुझे लगता है सब्जेक्ट वाइज ट्रेनिंग वो नहीं होगी।
सर जब बजट की प्लानिंग होती है और SCERT से जो बजट आता है या फिर आप जब मांग करते हैं बजट की, तो वो उसका प्रोसेस कैसे रहता है? वो डिसीशन सिर्फ प्रिंसिपल सर का होता है कि आप सीनियर लेक्चरर्स लेक्चरर्स भी इन्वॉल्व रहते हैं?
नहीं, बजट इज टोटली ज्यूरिसडिक्शन विद द प्रिंसिपल, ठीक है। हाँ, इतना जरूर है कि अगर उन्हें लगता है कहीं डिस्कशन की ज़रूरत है तो वो डिस्कशन कर सकते हैं, बट फाइनल डिसीजन इज विद द प्रिंसिपल।
एलोकेशन ऑफ फंड्स भी प्रिंसिपल के अंदर आता है?
यस एग्जैक्टली, फाइनेंशियल जो भी मैटर्स हैं दैट इज विद द प्रिंसिपल, फाइनेंशियल में हम लोगों का कोई रोल नहीं।
बट ऐसा कोई मीन्स है डाइट के, मेरा डाइट के अंदर, ताकि लेक्चरर्स या सीनियर लेक्चरर्स इवन आप सारे के सारे बता पाए प्रिंसिपल को कि हमको
इस चीज़ की जरूरत,
किसकी चीज़ की जरूरत है?
वो हम बताते रहते हैं, वो हम बताते हैं
डायरेक्टली प्रिंसिपल से।
उसका कोई ऐसा सिस्टम वैसे नहीं है, कोई सेट प्रोसीजर नहीं है, व्हेन एंड वेयर इट इज रिक्वायर्ड हम उसको समय समय पर कन्वे करते हैं,
डिमांड
लेते भी हैं
कि क्या रिक्वायर है। उसका एक डिपार्टमेंट बने हुए हैं जैसे कि जैसे एग्रीकल्चर का है या साइंस का है या
समय समय पर जो भी उसके चार्जेस हैं उनसे डिमांड्स लेते हैं, उसको फुलफिल भी करती की जाते हैं। दो तरह के बजट्स हैं, एक तो बजट वो जो एलोकेटेड फ्रॉम द स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट, एक तो वो बजट हो गया, एक दूसरे तरह का है जो बच्चों से फीस ली जाती है उस तरह के फंड्स हैं, दैट इज नॉट बजट, वो फंड्स हैं वॉइस फंड कह सकते हैं उसको, उसमें जो डिफरेंट हेड्स हैं उसमें जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट लगती है डिमांड्स होती हैं वहाँ से उसको प्रोवाइड किया जाता है। अगेन आई एम टेलिंग यू दैट दैट इज नॉट द बजट, दैट इज फंड्स, वॉइस फंड्स, ये बच्चों से ही फीस जो ली जा रही है वही फंड्स अलग अलग हेड्स में हम लोग डाइवर्सीफाई कर देते हैं।
तो सर ये बजट एलोकेट होने में कितना टाइम लगता है, जब तक आप प्लान दे और फिर आए
हो
आपको
काम महसूस हो
कि हो रहा है? ऐसा कुछ नहीं है, जैसे ही SCERT के पास, क्योंकि SCERT के पास भी बजट स्टेट से ही मिलेगा, स्टेट से जिस हेड में जो भी बजट एलोकेट हो रहा है वो सीधा बजट यहाँ पर उसको डिसेंट्रलाइज किया जाता है, जिस हेड में भी बजट वहाँ पर अवेलेबल है उसको डिसेंट्रलाइज डिस्ट्रिक्ट लेवल पर किया जाता है। हाँ, जब जब जरूरत होती है तो मंथली मीटिंग में जैसे प्रिंसिपल्स लोग जाते हैं वहाँ पर अपनी कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है तो उसको वहाँ पर देते हैं, और उसके बाद यदि उन्हें लगता है कि वहाँ पर इस चीज़ की एक्चुअल रिक्वायरमेंट है तो उसको प्रोवाइड भी करते हैं। मेरा टाइप में तो मैं समझता हूँ कुछ चीज़ें एडिशनल फंड्स के रूप में या बजट के रूप में इस बार मिल भी रही हैं और मिलेंगी भी, क्योंकि इट हैज़ बीन सेलेक्टेड एज द मॉडल राइट। 5 है आई थिंक, क्या मेरे पास 5 है, सो मेरठ इज़ वन ऑफ 5।
सर इसकी कोई क्राइटेरिया सेट की गई है क्यों सिलेक्ट हुआ है, क्या होगा मॉडल डाइट के में, कैसे बनेगा मॉडल डाइट?
नहीं, मॉडल डाइट का मतलब बिल्डिंग से नहीं है, मॉडल डाइट का मतलब है कि वहाँ पर जो एनवायरमेंट है और इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कुछ एडिशनल रिसोर्सेज प्रोवाइड करना है, मॉनेटरी रिसोर्सेज कुछ प्रोवाइड करना है सो दैट उसको हम मॉडिफाई कर सकें, उसको ब्यूटीफाई कर सकें।
तो सर किस बेसिस पे सिलेक्ट किए गए हैं, कोई क्राइटेरिया है इसका या रीजन वाइज कैसे?
मैं समझता हूँ कि अगर कोई सिलेक्शन का क्राइटेरिया होगा तो वो हमारी नॉलेज में नहीं है।
अच्छा।
वो स्टेट लेवल पे जो भी क्राइटेरिया उन्होंने तय किए हों, रीजन वाइज किए हों, या इसकी कोई हिस्ट्री रही हो बेटर सिलेक्शन के लिए, या कुछ अच्छे इस तरह के अचीवमेंट्स हुए हों पहले, है ना, हो सकता है कुछ अचीवमेंट्स पहले इस तरह के हुए हों जिसके बेस पर इसको सेलेक्ट किया गया हो, या रीजन वाइज कुछ उनका कोई क्राइटेरिया रहा होगा कि वेस्टर्न यूपी से एक लेना है, ईस्टर्न से एक लेना है, समथिंग लाइक दैट, बट आई डोंट नो अबाउट द क्राइटेरिया क्या है उसमें।
सर बाकी कोई भी एरिया में किसी भी तरीके की सपोर्ट और अगर ज़रूरी हो तो वो किससे है और वो क्या होगी?
नहीं, सपोर्ट का देखिए जो बेसिक हमारा सोर्स है वो तो स्टेट लेवल है
जी।
ठीक, इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी हम लोग सपोर्ट कई तरह से ले सकते हैं, लेकिन उसमें हमें थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि किस तरह की सपोर्ट चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चरल जैसे है, जिला पंचायत है, जैसे जिला पंचायत चूँकि ये रूरल एरिया में हमारा इंस्टीट्यूशन, थोड़ा सा अप्रोच की जाए तो जिला पंचायत से हमें बहुत सी चीज़ों में सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चरल मिल सकती है, एक एडिशनली हमें एफर्ट्स करने पड़ेंगे, एडिशनल पेन उसके लिए लेना पड़ेगा। सिमिलरली बहुत सी चीज़ों में हमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी सपोर्ट मिल सकती है और मिलती भी है, जहाँ जहाँ ज़रूरी होती है, जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट महसूस होती है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी सपोर्ट मिलती है, लेकिन जो मेन सपोर्टिव रिसोर्स है या सोर्स है वो स्टेट लेवल से ही है।
और कुछ अगर आपको ऐड करना है जो आपको लगता है स्टडी में हेल्पफुल होगा, प्लीज़।
मैं समझता हूँ कि सभी चीज़ें तो आपने पूछ ही ली हैं, कोई चीज़ छोड़ी तो नहीं है, बाकी तो डिपेंड करेगा कि आप उसको एनालिसिस कैसे कर रहे हैं। ठीक है, अब आप स्टडी में जो भी आप लोगों ने इंटरव्यूज़ लिए हैं हम लोगों के, उसको एनालाइज कैसे करते हैं ये तो आप तक है या नहीं? तो एनालाइज का तरीका है कि आप उसको एनालाइज कैसे करते हैं और उसकी सपोर्ट या उससे आपको क्या एडवांटेजेस आपकी स्टडी में मिलेंगे, और उस स्टडी के बाद जो जैसे मैं आपसे परसों पूछा था जो भी आप रिपोर्ट सबमिट करेंगे उसका एडवांटेज किस तरीके से और कहाँ मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आपको अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी होगी, और रिपोर्ट सबमिट करने के बाद जहाँ भी इसकी ज़रूरत होगी जो भी इसका एडवांटेज लेना चाहेगा वो लेगा, यही तो होता है।
सर उम्मीद तो यही है कि डाइट की फंक्शनिंग और बेटर ही हो इससे।
बिल्कुल बिल्कुल होगी
जी। थैंक यू सो मच।